राधा जी की सेवा करने प्रसन्न होंगे। इसलिए ये सब चीज को अनुकूल के अंदर में ये सब आप अनुकूल लेंगे कृष्ण, अनुकूल नहीं होने पाए। उदाहरण इस चीज को और अभी अच्छी तरह से समझिए। कृष्ण मथुरा आए हैं वृंदावन से, राधा रास बिहारी जीव की, सचिनंदन गौरहरि नित्यानंद प्रभु की। तो कृष्ण मथुरा पधारे, साथ में बलदेव जी, मधुमंगल सिद्धांत और सब सखा लोग भी आए। कृष्ण ने कहा जरा मथुरा का दर्शन तो करें, कल धनुष यज्ञ में चलना है। मनुष्य दर्शन करने के लिए सखाओं के साथ में गए। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर इसका वर्णन है। कोई अंधा जा रहा है कंधे से, सुना है सभी लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो तुमने नहीं सुना कृष्ण आए हैं और बलदेव जी। अरे यशोदा के यही पुत्र हैं, उनके देखिए अवस्थे के ये पुत्र हैं, चोरी कर रख दिया था वो आए बड़े सुंदर। तो चलो हम भी चलेंगे, अंधा अंधे से कर, तो चलो हम भी चलेंगे। बस अंधा का वो लठिया पकड़ करके दूसरा अंधा भी निकल गया। कहां जा रहा है? एक अंधे को भी इच्छा तमन्ना हो जाती है ये कृष्ण का हम रूप देखें। तो जिनको आंखें हैं, जो तरुण तरुण या तरुणी किशोर किशोरी हैं, तो उनके लिए तो बातें क्या है। सब लोग कृष्ण के दर्शन कर, अटारी से ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही है, लाई की खोए की ये सब वर्षा हो रही है। कृष्ण चलते चलते रंगभूमि में पहुंचे कंस के, जहां पर चारु मुष्टिक पहलवान तोसल हल कुशल इत्यादि सब वहां पर थे। हाथी एक बीच में खड़ी कर दी गई थी, मत वाला हाथी कुबल्या, अपने टक्कर का वो दूसरा हाथी बीच में नहीं था, हजार हाथियों का बल उसमें था। हाथी को उन्होंने बीच में अड़ा दिया। कृष्ण उसे और बलदेव जी ने दोनों ने उसे बात की बात में मार करके और आगे बढ़ गए। जब अखाड़े के पास में पहुंचे तो छींटे रक्त के दाग कुछ छींटे पड़े। इतना सुंदर लग रहा है, यह बड़ा सुंदर लगता है, वो दागे भी बड़ी सुंदर लग रही। निकट में आए चारों मुष्टिक ने कृष्ण और बलदेव को एक एक को पकड़ लिया। तुम लोग आए हो दर्शन करने के, चलो राजा कंस का मनोरंजन करें, अभी हम लोग कुश्ती करें परस्पर। बस चारों को कृष्ण ने कृष्ण को और मुष्टिक ने बलदेव जी को पकड़ लिया। सब लोग हाहाकार करने लगे। छोटे से अभी दूध पीने वाले बच्चे, अत्यंत किशोर, कोमल शरीर और कहां ये पहाड़ जैसे करिष्ठ और बड़े बलवान, ये बराबर की कुश्ती होनी चाहिए, ऐसी कुश्ती नहीं होनी चाहिए, इसको देखने से ही पाप लगता है। कृष्ण ने कहा कि भाई हम तो अपने बराबर वालों से लड़ेंगे और आप तो बड़े पहलवान हैं, आपसे हम कैसे लड़ेंगे? अजा अरे हमने सुना है तुमने अभी कुबल्या कुल को मार दिया, अगर तुम बकर सिंह को मारते तुमको देर नहीं लगी, पुतला को तुमको मारते हुए देर नहीं लगी। तुम लोग जंगल में खेल करते हो, कूद करते हो, बयान करते हो, लड़ते हो, अरे भाई उम्र से बात नहीं होती है, बल से काम होता है, तो तुम साधारण नहीं हो, एक खेत करता बस लड़ते। अब दोनों में जोड़ी लगने लगी। कृष्ण उनको पकड़ करके खींच रहे हैं, वो उनको बैठक ताली बजा रहे हैं, इधर में बज रही है टुकटुकी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, जिसके अंदर में रक्त नहीं उसके अंदर में भी रक्त और जोश आ जाए। खूब जोश से युद्ध चलने लगा, कभी वो उनको खींचता है, कभी वो रक्त मारता है, कभी वो, और पैर तरह भाज रहे हैं। जिस समय कृष्ण को चारू और मुष्टिक मारता है बलदेव जी को खुशी से, प्राण लेने पर आया, दोनों का
साथ जो नियम है वो तो रख दिया इधर, आप मेरी बात चलने लगा
बच्चे को मारने के। उस समय जब वो मुष्टिका अभ्यास करता है तो कृष्ण को कैसे लगता है, मानो कि एक विशाल हाथी को कोई कोमल हाथ से कुछ मारता है, वो हाथी को चोट पहुंचती है। एक गुलाब के फूल से या कमल के फूल से एक हाथी के ऊपर आप बड़े जोर से मारिए, उसको क्या लगेगा, कुछ नहीं। आज कृष्ण को फिर रस साधन और आज कृष्ण को बड़ा अच्छा रहा था, वो भी काल को कर्तव्य फील रहे हैं, बड़ा आनंद रहा है कृष्ण को बलदेव। ये जो कृष्ण को जो आनंद लग रहा है उसमें बतला अनुसुलने में कृष्ण अनुसुलनम, अतः कृष्ण को अच्छा लगे उसको कहते हैं भक्ति। तो कृष्ण को तो आज बड़ा आनंद हो रहा है, इसलिए इसको भी भक्ति कह दीजिए। भक्ति होगी कि नहीं होगी, कृष्ण का इस समय आनंद जो लग रहा है यह भक्ति नहीं होगी। क्यों? प्रतिकूल भाव युक्ति यह है, उसकी इच्छा कृष्ण को आनंद देना नहीं है, उसकी इच्छा क्या है, कृष्ण को मार करके आज खत्म कर देंगे, इसलिए उसके अंदर की इस वृत्ति के वजह से यह प्रतिकूल भाव है। इसलिए अनुकूल है अनुकूल लेना, अतः कृष्ण के रुचि के अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल भाव ने अतः कृष्ण को मार डालेंगे ऐसा भाव, ये प्रतिकूल भाव है, इसलिए भक्ति नहीं होगी। कृष्ण को भले ही अच्छा लगे, इसे सब कुछ कृष्ण के अच्छे लगने पर ही नहीं है, अपने मन की वृत्ति भी रहनी चाहिए जो कृष्ण के अनुकूल ही सेवा करे। इसलिए ये अर्थ हुआ अनुकूल माने अनु निरंतर, अनु माने वैष्णव के अनुगत, कृष्ण को अच्छा लगे किंतु उसके प्रतिकूल भी नहीं हो। शीलन अनुशीलन, अनुशीलन ही भक्ति है, किंतु उसके दो जो पहले बतलाया अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनाभिव्रतम, ये दो चीज नहीं दूर हो, अनुशीलन भी करता रहेगा और अनुकूल नहीं हो तो उत्तमा भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो होगी, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा संग सिद्धा आरोप सिद्धा ये हो जाएगी ना? और उसके द्वारा आप संसारिक सुख जितने हैं सब आपको मिल जाएगा, जो कुछ चाहेंगे उसके द्वारा सब कुछ हो जाएगा, धन जन पुत्र परिवार संपत्ति यहां तक कि स्वर्ग इत्यादि जो कुछ चाहेंगे, विभूतियां आष्ट सिद्धियां नौ प्रकार की निधियां ये सभी सभी कुछ, किसी को वशीकरण कर लेंगे, किसी को चाहेंगे तो मार भी सकते हैं, किसी को चाहे तो रुपया नोट हजार हजार ऐसे निकाल करके झर करके गिरने लग जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा भाई, किंतु प्रेम नहीं होगा उसके लिए उत्तम भक्ति। इसलिए अनुशीलन में भी अनु और शीलन, शील माने क्या, ये संस्कृत शब्द है शील, शील माने क्रिया करना, हमको हमारी जो तीन प्रकार की चेष्टाएं हैं, कायिक चेष्टा अर्थात तो इसमें ग्यारह इंद्रियां हमारी हैं, पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय और मन, इन सबके द्वारा ही भगवान के अनुशीलन में लगना पड़ेगा। इसलिए चेष्टाएं होती हैं कायिक की चेष्टाएं, मंदिर मार्जन करना, फूल ले आना, हार गूंथना, कृष्ण के लिए भोजन बनाना, कृष्ण के लिए भोजन अर्पण करना, उनकी आरती उतारना इत्यादि चौसठ प्रकार की जो भक्तियां हैं उनमें ही अपने इन कायिकी वाचिकी और मानसिक चेष्टाओं को करनी चाहिए। ये चेष्टाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है क्रियात्मक रूप में, एक होता है भावात्मक रूप में। एक तो करते हैं एक नहीं करना चाहिए इसमें भी आता है, जैसे आपने भाव समर्पण किए कृष्ण को, जब मैं एक गोपी के रूप में गोपियों की दासी बनकर के कृष्ण की सेवा करता हूं, ये काय की चेष्टा हुई न बाकी की न मानसिक क्या हुई, ये आत्मिक चेष्टा है, ये भाव, ये फलात्मक रूप में होना चाहिए और क्रियात्मक दोनों रूप में होना चाहिए। क्रियात्मक में कुछ निषेध की गई है, क्या, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य मत करो, मन में क्रोध में जीवा में उदर में उपस्थ में को दूर रखो, कुसंग मत करो, अत्याहार अधिक मत खाओ, अधिक मत सो, दुर्जनों का संग मत करो जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, उनका संग मत करो जो विषय में फंसे हुए हैं। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, भगवान का भजन करते हैं किंतु दुराचार भी उनके साथ में है, उनको मन ही मन में आदर दो किंतु उनका संग मत करो, उनकी उपदेशों को मत ग्रहण करो जो आचरण नहीं करते। इसलिए आचरण के साथ साथ में सद विचार, आचरण और भक्ति भी होना चाहिए। उन्हीं लोगों का अनुसरण करेंगे, उनके संग में हरि कथा सुनेंगे। यहाँ पर कृष्णानुशीलन का तात्पर्य केवल कृष्ण से ही नहीं है, इससे अनुकूल ये संबंध है, कृष्ण और कृष्ण के परिकर जो है वो सभी का। गुरु जी भी आ गए, भक्त लोग भी आ गए, उसमें परिकर जो नित्य राधा जी, उनके अनुगत मंजरी लोग, ललिता, विशाखा, चित्रा, नंद बाबा, वसुदेव जी, यशोदा जी, सुबल सिद्धाम इत्यादि, ये सब लोग हैं उनके परिकर हैं। इनका भी अनुशीलन करना चाहिए, बल्कि इस समय में साधन अवस्था में हमें कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कथा की अपेक्षा, कृष्ण के भगवत भक्तों का नाम और उनके लीला चरित्रों को पढ़ना और सुनना अत्यंत आवश्यक है। भागवत में प्रारंभ कहां से किया? नारद जी ने अपना चरित्र और भक्ति की बातें व्यास जी से की। व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को अपना जीवन चरित्र बतलाया, उसी प्रकार से गुरु जी अपना जीवन चरित्र, भक्तों का जीवन चरित्र बतलाएंगे, उसके अनुसार में हमको चलना चाहिए। कृष्ण का अनुशीलन करने से कुछ गड़बड़ हो सकता है, कृष्ण के उपदेशों को हम नहीं भी समझ सकते हैं, उनके चरित्र को। कृष्ण ने राश किया, हम भी राश करेंगे? लड़कियों को कपड़े हटा करके दर्शन किया, हम भी करेंगे? कृष्ण ने तो सब कुछ खाया, हम भी करेंगे? कृष्ण तो सांप पर चढ़ करके काली के ऊपर में नृत्य किया, हम भी करेंगे? विष खाया, आग खाए, हम भी करेंगे? ये सब नहीं, भक्तों का चरित्र, उसमें भी उत्तम भक्तों का नहीं, मध्यम भक्त के, जिनका हम चरित्र और विचार समझ सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, इन गुरु मध्यम अधिकारी उन्हीं के विचारों को लेकर के अधिक चलने से हमारा अधिक कल्याण होगा। इसलिए राधा नाम करते हैं हम किस लिए? कृष्ण प्रसन्न हो। और कृष्ण नाम किस लिए करते हैं? राधा जी प्रसन्न हो। हरे कृष्ण, हरे माने राधिके, कृष्ण के भी चित्त को हरण करने वाली राधिका का नाम हरा है, संबोधन में हो गया हरे। इसलिए हरे कृष्ण राधा कृष्ण, हरे कृष्ण हरे इसलिए करते हैं कृष्ण को आनंद हो, और कृष्ण किस लिए करते हैं? राधिका जी हम प्रसन्न होंगे, हमें सुख होगा, इसके लिए भाई हरि नाम मत करो, हम मुक्त हो जाएंगे, सुख नहीं होगा, मत करो। जब तक गुरु पदाश्रय नहीं किया था, आश्रम में नहीं आए थे, तब तक के लिए इसमें कोई भी काम करो, इसमें विचार करो, ये इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, हमारे गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे कि नहीं, तब तो वो ठीक है, तब उस काम को करो, अन्यथा उस काम को कभी खबरदार मत करो अपने सुख के लिए। ये सब विचार लेकर के अब इसमें एक विचार और हो, अन्याभिलाष न कह करके, अन्याभिलाषिता क्यों कहा गया? अन्नाभिलाष माने क्या अर्थ है और अन्नाभिलाषिता का अर्थ क्या है? देव और देवत्व, देव माने क्या? जैसे इंद्र देव है, कृष्ण देव है, ये राम इत्यादि देव है, और देवत्व माने क्या होता है? देवताओं का गुण, हरि और हरित्व, साक्षात हरित्वेन, और साक्षात हरि में अंतर है, साक्षात हरि कृष्ण है, और हरित्व माने कृष्ण के जो गुण है जिनमें है वो गुरु उनके सेवक हैं। इसलिए दोनों को एक मत कर देना। इसलिए यहां पर जो अन्नाभिलाष और यहां पर है अन्नाभिलाषिता, दोनों में अंतर है। अन्नाभिलाष कहते हैं कोई भी इच्छा, कोई भी कामना जो कृष्ण की सेवा से अतिरिक्त है। जैसे कोई एक व्यक्ति आया और आकर के हमें प्राण से मारने लग गया, जबरदस्ती, बस 20 थप्पड़ जमा दिया, कहीं तुम्हें मार डालूंगा, और मारने लग गया। अब उस समय वो कहता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। अब ये रक्षा करना जो कहा कृष्ण से, ये अन्नाभिलाष है कि नहीं है, आप लोग विचार कीजिए। इसमें कृष्ण की क्षमा करूंगा ये भाव है उस समय, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें, यह जो प्रार्थना है ये तो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त हुई। अब इसमें ये विचार करते हैं, इसको कहते हैं अन्नाभिलाष। अन्नाभिलाषिता का अर्थ है उसके रग रग में किसी भी सब अवस्थाओं में जो अभिलाषा होता है उसको अभिलाषा को कहते हैं, अभिलाषा अभिलाषिता। जैसे जिस समय में कृष्ण कोई एक व्यक्ति उसे मार रहा है और उस समय कहा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करें, जैसे द्रौपदी जी के ऊपर में संकट पड़ा और कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, उस समय में द्रौपदी जी ने पतियों के तरफ में देखा, भीष्म द्रोण की तरफ में देखा, किसी ने उनकी रक्षा नहीं की, तब वो कृष्ण को बुलाने, हे गोविंद राम शरण, अब तो जीवन है, अब तो लज्जा हमारी गई। किंतु कृष्ण नहीं आए, मुख में दांत के तले उसका भी अंचल लगा हुआ था, अभी अपनी चेष्टा कर रही है इसलिए कृष्ण नहीं आ रहे। जिस समय हा कृष्ण कहा, दोनों हाथ उठा दिए ऊपर और अपने लिए कोई भी चेष्टा नहीं की, अब संपूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर में दे दिया, शरणागत हो गए, इसको कहते हैं शरणागत। लज्जा रहे और न रहे बस चित्त कृष्ण में लगाया। उस समय कृष्ण दूर तो थोड़े थे पर झट आ गए, और झट आकर के कपड़े इतने बने कि कृष्ण कपड़े बन गए कि कपड़ा ही कृष्ण बन गया। लाखों गज कपड़े निकलते निकलते दुशासन की 10,000 भुजाएं, जो 10,000 हाथियों का बल, वो सब समाप्त हो गया, पसीने से चूर हो गया और कपड़े को नहीं। ये जो द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की, ये मेरी कपड़े को हमारी लाज बचाइए, अब ये लाज बचाना कृष्ण की सेवा के लिए है, ये तो दूसरी अभिलाषा जान पड़ती है। किंतु जब ही वो स्वस्थ हुई, अरे है अपने ये तुच्छ शरीर के लिए, मट्टी के लिए, जो आज न कल लंगा होना ही और जला दिया जाएगा, उसकी रक्षा के लिए हमने कृष्ण को बुला, पड़ी ग्लानी और साफ हुआ, अरे नहीं नहीं ऐसा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं अन्नाभिलाष। ये दूर हो जाना, ये दूर न रहे और रहे कोई बात नहीं, अर्थात अंदर में वो भावना नहीं रहनी चाहिए, किसी अस्वस्थ अवस्था में किसी दुर्घट अवस्था में पढ़ करके जो प्रार्थना कर दी जाए वो भक्ति का विरोधी नहीं है। किंतु स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए यदि आप करते हैं, ये अभिलाषिता का जो गुण है ये नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक स्थिति में भगवान से कोई चीज की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, रुपये का अभाव हो गया, ठाकुर जी का सुंदर अलंकार वस्त्र और भोजन नहीं मैं दे सकता, प्रभु आप कृपा कीजिए कुछ दीजिए तो जो आपकी सेवा कर सकूं। थोड़ी देर के बाद में आया, अरे प्रभु अभी अपनी चेष्टा कर रही है इसलिए कृष्ण नहीं आ रहे। जिसमें हा कृष्ण कहा, दोनों हाथ उठा दिए ऊपर और अपने लिए कोई भी चेष्टा नहीं की, अब संपूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर में दे दिया, शरणागत हो गए, इसको कहते हैं शरणागत। लज्जा रहे और न रहे बस चित्त कृष्ण में लगाया। उस समय कृष्ण दूर तो थोड़े थे पर झट आ गए, और झट आकर के कपड़े इतने बने कि कृष्ण कपड़े बन गए कि कपड़ा ही कृष्ण बन गया। लाखों गज कपड़े निकलते निकलते दुशासन की 10,000 भुजाएं, जो 10,000 हाथियों का बल, वो सब समाप्त हो गया, पसीने से चूर हो गया और कपड़े को नहीं। ये जो द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की, जो मेरी कपड़े को हमारी लाज बचाइए, अब ये लाज बचाना कृष्ण की सेवा के लिए है, ये तो दूसरी अभिलाषा जान पड़ती है। किंतु जब ही वो स्वस्थ हुई, अरे है अपने ये तुच्छ शरीर के लिए, मट्टी के लिए, जो आज न कल लंगा होना ही और जला दिया जाएगा, उसकी रक्षा के लिए हमने कृष्ण को बुला, पड़ी ग्लानी और साफ हुआ, अरे नहीं नहीं ऐसा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए,
इसको कहते हैं अन्नाभिलाष। ये धूप हो जाना, ये धूप ना रहे और रहे कोई बात नहीं, अर्थात अंदर में वो भावना नहीं रहनी चाहिए। किसी अस्वस्थ अवस्था में, किसी दुर्घट अवस्था में पढ़ करके जो प्रार्थना कर दी जाए वो भक्ति का विरोधी नहीं है, किंतु स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए यदि आप करते हैं, ये अभिलाषिता का जो गुण है ये नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक स्थिति में भगवान से कोई चीज की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, रुपये का अभाव हो गया, ठाकुर जी का सुंदर अलंकार वस्त्र और भोजन नहीं मैं दे सकता, प्रभु आप कृपा कीजिए कुछ दीजिए तो जो आपकी सेवा कर सकूं। थोड़ी देर के बाद में आया, अरे प्रभु का सर्वस्व और उनको हम बुला रहे हैं, उनको इन चीज की कमी है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा जो राधा कुंड को मैं बना दूं अच्छी तरह से, फिर कारण अरे मैं बनाने वाला, ये तो चिंतामणि से बना हुआ है, धिकार करने लगे। इसलिए किसी किसी समय में, आपत समय में जो भगवान से प्रार्थना इत्यादि की जाती है, आपत की स्थिति में वो सब अन्नाभिलाष नहीं है, किंतु स्वाभाविक स्थिति में भी जब हम हैं कहते प्रभु हमको धन दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, रुपया दीजिए, संपत्ति दीजिए, ये दीजिए, मैं ऐसा पुत्र दीजिए, मैं ऐसा पत्नी बन जाऊं भाषण देने वाला जो विश्व ब्रह्मांड पत्थर मरा दू, सब लोग हमारे बात को सुन करके हमारे चरणों में झुक जाए, तो ये तो हो गई भाई उल्टी बात। इसलिए स्वाभाविक स्थिति में अन्नाभिलाष नहीं होना चाहिए, ये अन्नाभिलाषिता का अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें अन्नाभिलाष नहीं होना चाहिए, अभिलाष कभी हो जाए और थोड़ी देर के बाद में उसके प्रति धिक्कार आने लगे, ये तो हो सकता है, इसे अन्नाभिलाषिता का। और एक इसमें बात है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म के बिना हमारा चल सकता है कि नहीं? कोई कर्म नहीं करेंगे भक्ति हो सकती है कि नहीं? नहीं होगी भाई। एक आदमी है वो श्वास तो लेगा ही नहीं तो मर जाएगा, भक्ति भजन क्या करेगा? भोजन कुछ करेगा कि नहीं? तो ये कर्म है, जो कुछ भी करते हैं वो तो कर्म है फल की इच्छा से, तो बिना कर्म किए एक सेकंड भी नहीं रहते। गीता का भी यही उपदेश है, जो कहता है जो मैं कर्म नहीं करता वो मिथ्याचारी, सा कुछ वो मिथ्याचारी है, बिना किए हुए रहने सो रहे हैं ये भी कर्म है, श्वास ले रहे हैं भी कर्म, खा रहे हैं वो भी कर्म, चल रहे हैं वो भी कर्म, सब कुछ कर्म है। किंतु भाई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जो भक्ति को ठक दे, कर्म बिना नहीं चलेगा, उसमें कृष्ण की भावना लगा करके उसको अनुकूल कर करके उसको कीजिए, तब तो ये ठीक है। और नहीं तो जो कर्म जैसे यज्ञ करने लगे, ओम स्वाहा स्वाहा करने लगे, किस लिए कर रहे हैं? कर रहे हैं जैसे इसे वातावरण शुद्ध होकर के वर्षा हो, इसे और बातें हो, हम सुखी रहेंगे, देश में अन्न फसल इत्यादि हो, और उसके बाद में हम भगवान को अर्पण करेंगे, नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। शुद्धा भक्ति होनी चाहिए, उसके द्वारा कर्म से ठक न जाए। कोई कोई लोग ज्योतिष विद्या सीखते हैं, किस लिए क्या जरूरत पड़ी है? लोग आएंगे कहेंगे तुमको पुत्र होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो उसके लिए व्यवस्था कर देंगे, तबीज दे देंगे, नृसिंह मंत्र दे देंगे, ये सब खबरदार मत करो, इसके द्वारा भक्ति ढक जाएगी। इसलिए उतना ही करो जो भक्ति के अनुकूल करके कर्म के द्वारा हम भक्ति को और विकसित कर सकते हैं, वो ऐसा कर्म होना चाहिए। जैसे हम हरिनाम कर रहे भी कर्म है, जीवा से चला रहे हैं तो ये कर्म है, किंतु ये भगवत भक्ति है, ये भगवान के लिए हो रही है, किसी पर जीवा के ऊपर में स्फूर्ति होंगे। और अन्नाभिलाष ज्ञान कर्म, ज्ञान भी यदि अपने मुक्ति के लिए कर रहे हैं और संसार ये कुछ नहीं है, बेकार का है, इससे हमारा कोई भी तात्पर्य नहीं है, नई कर रहे हैं, ये भक्ति का ठक देगा, ये मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा ये भक्ति को ठक देगा। इसलिए ऐसे ज्ञान कर्म जो जो अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा दर्शन और उसे योग में समाज में मिलना, परमात्मा बन जाना, ये सब चीजें भक्ति का अवरोधक है, उसे भक्ति को ढक देता है श्रेणी की। इसलिए भक्ति के अनुकूल कर्म और ज्ञान को ग्रहण किया जाएगा। आदि शब्द से आलस्य भी नहीं होना चाहिए। एक बात और भी इसमें है, सुख बात क्या, एक आदमी शुद्ध भक्ति करना चाहता है किंतु लोक संग्रह करने के लिए कुछ ऐसा कर्म ऊपर से कर देता है जो भक्ति का विरोधी जैसा लगता है, तो उसको भी भक्ति का विरोधी मत समझो। जैसे एक गुरु आचार्य हैं, हम लोग वैष्णव में भी श्राद्ध होता है, आप लोग जानते होंगे, वैष्णव को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये नियम है, क्योंकि जो हरिनाम कर लेता है उसका अपने आप कभी श्राद्ध हो गया, उसको श्राद्ध करने की कोटि कोटि पिंड देना और पितृ पुरुषों को श्राद्ध करना हो जाता है, इसलिए वैष्णव लोग श्राद्ध नहीं, जो हरिनाम कर लिया उसका श्राद्ध क्या, श्राद्ध तो उसके लिए होता है जो नरक में गए हैं, जिनकी कोई गति नहीं उनके लिए श्राद्ध दिया जाता है, पिंड दिया जाता है। अरे भाई, तो जो हरिनाम किया उसके 33 कितने 21 पीढ़ी के 14 पीढ़ी के और 7 पीढ़ी के लोगों का उद्धार हो गया, उसके लिए पिंड देने की क्या जरूरत है। किंतु लोग कहेंगे, अरे इसने कोई श्राद्ध नहीं किया, इसके पिताजी मर गए वैष्णव थे तो क्या हुआ, तो इसलिए उनके लिए यदि करते हैं और उसमें भगवान को प्रसाद निवेदन करके बस वही उनको निवेदन कर देते हैं उस आत्मा के लिए, तो उस आत्मा का भी कल्याण हो जाता है और इसमें भक्ति का विरोधी भी नहीं हुआ। इसलिए ये सब विचार करके पूरा तब भगवान की भक्ति जो की जाती है तो उसको कहते हैं उत्तम भक्ति। कितना बच गया, प्रश्न कर लिए छोड़, तो इसलिए भाई उत्तम भक्ति को समझकर और तब इस पर विचार करके वैष्णव के अनुगत्य में नैरंतर्य उसमें लगाकर कृष्ण के लिए रोचमाना हो किंतु प्रतिकूल नहीं हो, ज्ञान कर्म को योग तपस्या को भक्ति करेंगे किंतु भक्ति के अनुकूल उन कर्मों को और ज्ञान को भी करेंगे, जो भी लगा सकते हैं कृष्ण के लिए चिंतन करना और दूसरे प्रकार की अभिलाषा न रहे, तो समझो कि हमारी भक्ति अब क्रमशः मध्यम से उत्तम की तरफ में चल रही है, जीवन कुछ दिनों में ही सार्थक होने वाला है, हमारे अंदर में भाव प्रकटित होगा जो लादनी शक्ति की वृद्धि है और तब फिर प्रेम होने की गुंजाइश है। और जो इस पर विचार नहीं करके भक्ति को करता है कुछ दिनों में उसका चित्त और हट जाता है और अंत में भक्ति से वंचित हो जाता है। आज ही अपना वक्तव्य कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो इसके संबंध में तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कीर्तन करके हम लोग बंद करें।
आपने कहा कि राधा जी की सेवा करने से भगवान कृष्ण खुश होंगे, लेकिन क्या राधा जी खुश होंगे?
हाँ, वो देखेंगे कि कृष्ण खुश हो रहे हैं तो झट खुश हो गए। बच गए, मान ले कि कोई हमारे गुरु भाई हैं, वो अस्वस्थ हो गए, जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं इसलिए जी गुरु जी प्रसन्न हो, गुरु जी ने देखा जैसे हमारे इस प्रिय भक्तों की ये सेवा कर रहा है तो बस गुरु जी प्रसन्न हो गया, ठीक वैसे ही राधा जी की प्रसन्नता से कृष्ण, कृष्ण की प्रसन्नता से राधा जी
प्रसन्न हो गया। मैं आरती के संबंध में राधा जी से होकर के भगवान कृष्ण को कहा, आपने बोला कि राधा जी कुछ नहीं,
वो जैसा विधि है वो विधि पालन करना पड़ेगा, कृष्ण को निवेदन करना पड़ेगा और राधा जी को ध्यान करना पड़ेगा, गुरु जी को ध्यान करना पड़ेगा, और जिस समय वो राधा कृष्ण को खिला रहे हैं गुरु जी अपने इस फॉर्म में नहीं रहेंगे पुरुष रूप में, उनको मंजरी के रूप में सखी के रूप में वहां पर जाना पड़ेगा, राधा कृष्ण की सेवा में दूसरा कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। इस वैसी भावना करके राधा जी ने रसोई बनाई, राधा जी कृष्ण को आरोहण भोजन करा रही हैं और गुरु जी हमारे सखी के रूप में उनको ये सब पानी और ये भोजन थाल और सब उनको सामने रख रहे हैं और राधा जी प्रेम से चलते हुए उनको खिला रही हैं, ऐसी सब भावनाएं करना पड़ता है। यही सब भावनाएं भक्ति के अनुकूल है। और यदि इस भक्ति के अनुकूल में हमने गुरु जी को कह दिया जी एतत् नैवेद्यम् अङ्गुरवे नमः कर दिया है, तो गुरु जी प्रसाद पाएंगे? कहिए ले जाओ हटाओ, हमको जरूरत नहीं। इसलिए गुरु जी को दिया जाएगा, इसलिए कि वो राधा कृष्ण को भोग लगाएं, उनको बैठा करके खिलाएं, और फिर उनका प्रसाद जो होगा धनिष्ठा जी ले आएंगी और ले करके राधा जी को देंगी, और राधा जी अपनी सब सहेलियों को बांट करके उसमें अपने गुरु जी दिए हैं और तब फिर अपने खाए। ऐसा नहीं जो कृष्ण भी बैठ गए खाने के लिए और राधा जी बैठ गए, यार और दोस्त जैसे, अरे यार तुम भी खाओ हम भी खाएं, ऐसा नहीं। वो यार जगत की यार और दोस्त ये सब चीजें वहां पर नहीं चलेगा। वहां पर जैसे हमारे परंपरा के नियम है उस नियम से चलना पड़ेगा। आजकल तो ऐसा ही चले गए समुद्र के किनारे, पिकनिक इत्यादि क्या होने लग गई और दोनों यार बैठ गए बस, अरे भाई बस चलने लगे। इसलिए ऐसा नहीं, विधि विधान के अनुसार में हमको चलना चाहिए। उत्तम पुरुषों के लिए ये, उत्तम भागवतों के लिए ये विधि विधान नहीं, वो किसी का अंकुश शास्त्र का अंकुश भी उन पर नहीं चलता है। वो समझते हैं कि सब कुछ कृष्ण का भोग है, सबका प्रसाद है, वो जहां तहां उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, उनमें कोई भी बात नहीं। क्या बोलिए
राधे हा कृष्ण बाले कवे गौरावन सुरथनी तते राधे हा कृष्ण बाले राधे हा कृष्ण बाले हमें कंदिया Oh. बाबरी पे